Market Monster. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. With your queries, you can call us on 2331-4444 and 2342-1050. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke sath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lete hain, sath hi nazar dalte hain pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadhte utarte graph par. Din somvar ka hai aur aaj bharatiya share bazaron ke liye saptah ka pehla din. BSE aur NSE pichle hafte थोड़ा सा इन दोनों स्टॉक मार्केट्स ने निराश किया था, लेकिन खुशी की बात आज ये है कि सप्ताह के पहले दिन दोनों चढ़कर बंद हुए हैं। श्रोताओं का भी दिन है आज, आप चाहें तो शेयर मार्केट से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं, नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050। इन्हीं दो नंबरों पर आप फोन करें और अपने सवाल को पूछें 011 एसटीडी कोड के साथ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका।
नमस्कार।
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश।
थैंक यू हर्ष। Benchmark indices end in green today. Sensex gains 111 points. Nifty closes above 22,100. Indian-Iran ties hit new milestone. Signed 10-year contract on operating Chabahar port. India's retail inflation eases to 4.83% in April versus 4.85% in March.
Utar chadhav bhare karobar ke baad Sensex aur Nifty badhat ke saath hue band. भारत और ईरान ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर 10 साल के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर और मुद्रा स्फीति की दर अप्रैल में घटकर 4.83% हुई, मार्च में ये दर 4.85% थी।
We already have our first listener with us online, but before we take your call, Yogesh Sharma, let's hear how the markets behaved, as Harsh was telling us at the beginning of the program.
Yes, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वैसे तो आज सत्र की जो शुरुआत हुई काफी उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा था, लेकिन सत्र के अंत में बाजार में थोड़ी मजबूती आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 111 अंक चढ़ा और 72,776 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 49 अंक की बढ़त रही और ये 22,104 पर रहा।
Benchmark domestic indices BSE and NSE Nifty kicked off with market volatility, but by the end of the day, it managed to eke out marginal gains on the first trading session of the week. At close, BSE Sensex rose by 111 points or 0.15% to settle at 72,776. Meanwhile, the broader NSE Nifty witnessed a gain of 49 points or 0.22%, closing at 22,104. From the Sensex basket, Asian Paints, Sun Pharma, HDFC Bank, TCS and Axis Bank were among the major gainers. In contrast, Tata Motors, NTPC, SBI, Bharti Airtel and Titan were among the biggest laggards. In the broader market at the BSE, the mid-cap sector rose 0.36% and the small-cap index declined 0.23%. In sectoral indices at the BSE, the services sector jumped 1.41%, capital goods sector gained 1.34% and the realty sector rose 1.32%. On the other hand, the auto sector declined 1.46% while the energy sector fell 0.80%.
और हम अपने कॉलर के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच ये बता दें कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 83.53 रुपए रही और दिन के सत्र के दौरान डॉलर इंडेक्स जो है वो 105.28 पर चल रहा था। सेंसेक्स पर हम चर्चा करेंगे सिद्धार्थ के साथ, लेकिन चूंकि कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल इंदौर से अब जुड़ गए हैं। सो अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत, क्या सवाल है आपका, जल्दी से पूछ लें।
सर हमारे अनिल जी
आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप प्लीज अपना सवाल दोबारा पूछें।
नहीं अनिल जी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस फोन को डिस्कनेक्ट करें, थोड़ी सी किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां सिग्नल्स और स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हों, मजबूती के साथ आ रहे हों। आपका सवाल बहुत बढ़िया लग रहा है, आप दोबारा पूछें हमारे साथ। फिलहाल चलते हैं योगेश शर्मा के पास, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश जी स्वागत आपका, क्या सवाल है? योगेश जी सवाल पूछ। सिद्धार्थ, अगर आज के मार्केट की हम बात करें, क्योंकि अभी कुछ टेलीफोन लाइन्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, जब तक ये लाइन ठीक हो जाते हैं तब तक हम थोड़ा शेयर मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सी जो एक गिरावट का दौर पिछले हफ्ते हम लगातार देख रहे थे, लोगों का जो मार्केट को लेकर थोड़ा सा उत्साह था कम पड़ रहा था, लेकिन आज एक तरीके से इसमें एक विश्वास आता दिख रहा है। और विश्वास मैं इसलिए कह रहा हूं सिद्धार्थ, क्योंकि बहुत ज्यादा जंप नहीं हुआ है और जो गिरे हैं स्क्रिप्ट उसमें भी खरीदारी हुई है, जैसे टाटा मोटर्स के शेयर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर।
नहीं, बेसिकली मुझे जो लगता है, जो आपने जैसा कहा कि पिछले सप्ताह, मुझे लगता है पिछले सप्ताह से और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो ये गिरावट का दौर या थोड़ा जो उतार चढ़ाव जो आप कहते हैं हम लोग शेयर बाजार की भाषा में या वोलेटिलिटी, तो वो थोड़ा देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है ये चूंकि दौर भी ऐसा है जब चुनाव के बीच में कुछ कुछ जिस तरह के भी इंडिकेटर्स आते हैं तो एक मार्केट उससे भी क्यू लेती है। दूसरा, जो आपने बात कही जो अच्छे स्टॉक्स हैं, तो जब आज जब अच्छे लेवल्स पे आते हैं तो वो एक बाइंग जो है दोबारा लौट के आती है, जैसे कि आज आपने भी जिक्र किया 2-3 शेयरों में, स्टेट बैंक इंडिया हो, टाटा मोटर्स हो, और भी नाम लिए जा सकते हैं, इंडिया होटल्स हैं। तो मतलब जब अच्छे लेवल्स हो तो ऑब्वियसली एक मार्केट में रिबाउंड भी आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो दौर जो है उतार चढ़ाव का उससे हम निकल गए ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो मुझे लगता है जब तक ये चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं थोड़ा सेटल मार्केट सेटल थोड़ा नहीं करेगी, इस तरह की कंडीशंस अभी परसिस्ट करेंगी। हालांकि इसके पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन हम कहें वो नहीं है,
सेंटिमेंट पर मार्केट चलता है, वेट कर रहे हैं लोग कि अब 4 जून को अब नतीजे आ ही जाए उसके बाद देखें। लेकिन मार्केट मंत्रा के इस मंच से अनुभव हम लगातार ये लोगों को बताते रहे हैं कि मार्केट में आप निवेश जरूर करें लेकिन ट्रेडर बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक आम निवेशक का उसमें नुकसान हो सकता
बिल्कुल
है।
बिल्कुल। और इस बीच चलते हैं दोबारा दिल्ली से, हमारे जो श्रोता हैं योगेश वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश अपना सवाल पूछे। जी जी सवाल पूछे।
मेरा सवाल ये है कि मार्केट में मुनाफा वसूली करने का क्या सही तरीका है? क्या हम किसी स्टॉक में अगर हमने पोजीशन ली है, प्रॉफिट चल रहा है, क्या उसको बेच करके और 1-2 रुपए कम पे वापस एंटर हो जाए तो क्या मुनाफा उसके लिए सही तरीका है?
योगेश जी आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो देखिए, जब आप कोई भी शेयर, जब भी जैसा अभी हर्ष जी ने भी कहा कि ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए, तो एक लेवल आप अपने आप भी डिसाइड कर लें कि आप किसी शेयर में जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप किस लेवल तक उसमें किस तरह का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आप अपने मन में एक तय कर लें, एक कोई भी एक लेवल तय कर लें, 20%, 5%, 10%। और ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने लेवल आपने अचीव कर लिया है जो आपने सोचा था अपने मन में, और अगर आपको शेयर उस शेयर आपका उस लेवल पे पहुंच गया है तो बिल्कुल आप उसको बेचें और प्रॉफिट लें, और जब वो नीचे आए तो बिल्कुल दोबारा खरीदें। बिल्कुल इसमें कोई भी बुराई नहीं है और बहुत समझदारी का काम है, लेकिन लेवल जरूर बनाएं। कई बार क्या होता है, जो हम लोग होते हैं, जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, कई बार हम लोग सोचते रहते हैं तो एक लेवल बनाएं ताकि आप प्रॉफिट बुक भी करें।
जी यू नो सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. यू वर जस्ट टेलिंग अस दैट वॉलिटिलिटी इज गोइंग टू बी देयर इन द मार्केट फॉर सम टाइम, सम मोर टाइम, एंड देयर डजंट सीम टू बी एन इकोनॉमिक रीजन फॉर इट. बट सम एनालिस्ट आर ऑल्सो सेइंग दैट दिस वॉलिटिलिटी कुड ऑल्सो बी यू नो इन अ वे कनेक्टेड विद चाइना, बिकॉज एट द मोमेंट एंड हैज बीन यू नो द ट्रेंड फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. Analysts say that Indian shares, the values are overstretched, while at the moment the Chinese market is, you know, under is a cheaper option. So that is also the reason, you know, that a lot of investors are going, the FIIs are going towards China now. They're betting on China, like they're buying more China shares than India. So that could be the also reason for volatility.
See, I would say, I think if even to agree to that assumption, I think we still need to wait for some more time and some more data. And to say that China story has suddenly changed, I think China story is still unfolding.
Okay.
And the housing crisis and the way, you know, if you see the Chinese economy under pressure, the way there is pressure for bigger names to move out of China. So I don't think this would be the right conclusion to draw. Plus, to say that people are saying that Indian market is already overheated or we have already at a very high levels, I would still say, see, we are one of the biggest consumer-driven markets.
And one of the fastest-growing economies. The fastest-growing economy.
Plus, you tell me one fundamental economic parameter where India is lacking.
Right.
So, I don't see a reason. Plus, to say that we are already overheated, or where are people making still
making... That's one view, but in the long run, there's also the other view that, you know, the India story is a much better story than, you know, what is happening.
So, I think India is a story. India is a growing economy. India will continue to grow despite whatever happens to elections. We started entered the era of economic reform 30 years back. We are on that path of...
Yes.
So, I don't see anything, any reverse... So even today we've just got this inflation data.
Yes.
I think inflation is also on the downward trajectory. Absolutely. So everything is positive about India. So, and yes, if you're coming to India or you're investing in Indian markets, please stay calm, stay invested for some time, and you will make profits.
Right. And now let's take the next call, which is also from Delhi. That's our listener Bharat Bhushan who's calling us. Bharat Bhushan ji, welcome to the program. Please ask your question.
Namaste.
Apna sawal puche.
सवाल मेरा ये है कि किसी भी शेयर में ओवरसोल्ड पोजीशन या ओवरबॉट पोजीशन जानने का क्या तरीका है, कैसे हम जान पाएंगे कि इस शेयर पर्टिकुलर शेयर में ओवरबॉट की पोजीशन है या फिर इसमें ओवरसोल्ड की पोजीशन है. धन्यवाद.
देखिए भारत भूषण जी, इसके लिए आप जब भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, आप किसी न किसी ऐसे एक्सपर्ट से सलाह लें जो आपको इस बारे में एक सही एकदम आपको इन्फॉर्मेशन आपको जो है देगा, और उसी जो है एक इन एक्सपर्ट ऑन इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप जो है इस इन्फ्रेंस पे पहुंचे कि ओवरसोल्ड है ओवरबॉट है. किसी के कहे या किसी की सुनी हुई बात पर इस इन्फ्रेंस को ड्रॉ मत करें
जी.
और क्या हम बात कर लें थोड़ी सी एशियाई और यूरोपीय बाजारों की भी. एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा है. हांगकांग का हैंगसेंग 0.79% मजबूत हुआ, जबकि सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.39% बढ़ा है, लेकिन दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में 0.04% की गिरावट रही है. जापान के निकेई सूचकांक में भी 0.33% की गिरावट रही. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.21% कमजोर हुआ. इधर यूरोपीय बाजारों में भी मिला जुला कारोबारी रुख देखने को मिल रहा है. लंदन का फुटसी 100 मामूली रूप से बढ़त पर है, लेकिन फ्रांस का कैक 40.18% पर गिरकर कारोबार कर रहा है. जर्मनी के डैक्स में भी 0.17% की गिरावट रही है. तो सिद्धार्थ, अगर हम ये देखें, आपसे दो मिनट बात कर लें एशियन मार्केट के बारे में. मिस्टर डी के बैनर्जी वैसे जुड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश बैनर्जी साहब थोड़ा सा इंतजार कर लें. पूरे एशियाई मार्केट में भी देखें, जो मेजर इकोनॉमीज हैं इंक्लूडिंग जापान और जो अच्छे शेयर मार्केट्स हैं सिंगापुर और चाइना, इसमें भी लोग बहुत कॉशियस होकर ट्रेड कर रहे हैं. थोड़ी सी बढ़त थोड़ी सी गिरावट, यही रुख चल रहा है पिछले आप महीने भर से देखें तो. What does it indicate?
तो हर्ष, आपने जो बात बोली ना, आप देखें कि उन मार्केट्स का भी, इंडियन मार्केट्स का उन मार्केट्स पे अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. वहां जो बैठे वो जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं या जो, तो वो भी इंडियन मार्केट से बहुत बड़े तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं अब. और विज़ावेस प्लस थोड़ा बहुत जो अभी इंटरनेशनली स्टिल थिंग्स आर लिटिल बिट वॉलेटाइल, स्टिल नॉट सेटल्ड, चाहे वो रशिया या यूक्रेन हो या इजराइल हमास हो. सो दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स आर गेटिंग एडेड. तो आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ रीजन. जैसे कि अभी अनुमा जी ने कहा चाइना के बारे में भी बोला. चाइना स्टोरी 10 दिन पहले ये था कि अभी चाइना में जो है अभी थिंग्स आर स्टिल नॉट क्लियर. आज एफआईआई उधर जा रहे हैं. बट जहां तक मुझे लगता है इंडियन मार्केट के बारे में, अब इंडियन मार्केट उतना एफआईआई ड्रिवन या हम खाली एफआईआई डिपेंडेंट मार्केट है, अब हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है थोड़ा सा जब तक ये इंडिया में इस तरह का माहौल एक इलेक्शंस का इस तरह का, बिकॉज इंडियन मार्केट्स आज भी वन ऑफ द बेस्ट रिटर्निंग मार्केट.
हम ये कह सकते हैं कि नाउ इंडिया हैज और इंडियन मार्केट हैज बिकम द ड्राइविंग फोर्स फॉर द अदर एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स एज वेल. डीके बनर्जी साहब
नमस्कार. सर
नमस्कार, सवाल पूछ लें आप.
सर हम ये पूछना चाहेंगे कि जो मार्केट में, हेलो
जी पूछें प्लीज बनर्जी साहब.
हाँ जी, गोल्ड का जो एक चल रहा है मार्केट में इतना हाई उछाल ले रहा है, क्या हमें क्या गोल्ड क्या बिस्किट खरीद लेना चाहिए या बने बनाए तो लॉस होता है, बाकी बिस्किट लेने में बेनिफिट है क्या? क्योंकि ये बॉन्ड तो कभी कभी खुलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जो बैंकों में होते हैं.
डीके बनर्जी जी बनर्जी साहब, एक आपको एक मोटे रूप से एक बात बोलूं कि गोल्ड का निवेश किसी भी फॉर्म में आपको हमेशा मुनाफा देगा, हमेशा मुनाफा उसने दिया है. जहां तक आपने कहा कि उसको आप किस फॉर्म में लें, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप उसको बिस्किट्स या जो भी बोल रहे हैं उसको अगर आप सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो ऑब्वियसली जो उसमें उसकी मेकिंग होती है या जो आप उस पर जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं बिसाइड्स द गोल्ड का जो रेट है या जो उसकी वेट है तो वो बहुत कम होता है. हाँ अगर आप ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदेंगे तो यस ये बात सही है कि मेकिंग उस पर लगती है, मेकिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं. और जो दूसरी बात आपके मन में जो ये आशंका है कि जो गोल्ड बॉन्ड हैं वो कभी कभी आते हैं, ये गलत है. ये अब निरंतर सरकार द्वारा जो है लगातार इशू किए जाते हैं, तो समय का आप उसको बिल्कुल उसको बारीकी से उस पर नजर रखिए और इसका एक रेगुलर इंटरवल्स पे वो इश्यूएंसेज आती हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और उस पर आपको एक रिटेल इन्वेस्टर को सरकार डिस्काउंट भी देती है. तो जिन्होंने आज से जब ये शुरू हुए थे गोल्ड बॉन्ड स्कीम जब शुरू से इन्वेस्ट किया, टुडे दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट.
बिल्कुल.
तो गोल्ड एक अच्छा निवेश है, हमेशा रहेगा.
लेकिन अनुभव गोल्ड के साथ एक निवेश में है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा.
बिल्कुल,
ऐसा नहीं कि आज आज खरीदा.
हाँ जी, एक बात है ना, तो किसी भी निवेश के साथ पेशेंस रखना
जी बिल्कुल सही बात है.
हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं
जी.
और जो एक बात और लोग कहते हैं कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है वो भावनाओं से जुड़ी होती है, तो वो भी एक फैक्टर है.
मैं आपकी भावनाएं अनुभव जी समझ सकता हूं, क्योंकि आप गोल्ड बॉन्ड में क्यों करना चाहेंगी, आप तो ऑर्नामेंट्स लेना चाहेंगी, लेकिन उसमें जो बनाई के चार्जेस लग जाते हैं और सेल करने पे उतना रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए तो बेहतर निवेशक के लिए है कि या तो गोल्ड बॉन्ड में करें या प्योर गोल्ड
ETF में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ बता रहे थे. और अगले कॉलर पर के पास चलते हैं, दैट इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज अपना सवाल पूछें.
हाँ सर, जैसे मेरा गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ है और अब अगले महीने के बाद वो 8 साल हो जाएगा तो पैसा क्रेडिट करा लूंगा, तो क्या मैं नया इन्वेस्टमेंट कर लूं फिर वापस, जैसे आते रहता है गोल्ड में क्योंकि प्राइस ज्यादा है? पहला प्रश्न तो यह है कि मैं दोबारा करूं. दूसरा प्रश्न ये कि सर गोल्ड कमोडिटी मार्केट में आता है तो हमारे ख्याल से मक्का का भी ETF निकालना चाहिए, क्योंकि मैंने न्यूज पढ़ा मक्का में काफी तेजी रहता, अगर रहता तो मैं ले सकता था ETF अगर रहता मक्का इसका जो भी हो चना होना का.
अब सिद्धार्थ जो आप बात कर रहे थे बस वही बात है, अगर इन्होंने 8 साल पहले लिया होगा तो निश्चित तौर पर 35-36 हजार रूपये प्रति 10 ग्राम के रेट पे लिया होगा और उस पर बैंक ने 2% का ब्याज भी दिया होगा हर साल.
और डिस्काउंट भी मिला होगा.
डिस्काउंट भी मिला होगा और आज सोने की कीमत देख लीजिए लगभग डबल.
तो जितेंद्र जी जहां तक आपके सवाल का जवाब है वो तो जो आपने 8 साल पहले जो किया है वो आज आपको आपके सामने है उसका नतीजा. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको इस निवेश को दोबारा निवेश करें आप जब भी आपको मौका लगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में. और जहां तक आपने मक्का की बात की तो ये मुझे लगता है एक मार्केट की अपनी मेच्योरिटी के ऊपर होता है, जब भी जो भी वो जिस तरह से भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं वो जो उसका फैसला करती हैं तो वो जब उचित समय पर उनको लगता है कि अगर इस तरह के फ्यूचर्स की जरूरत है या इस तरह के ट्रेडिंग ऑप्शंस की जरूरत है तो वो उसको इंट्रोड्यूस करती हैं.
गोपाल मुंबई से हमारे साथ. गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत.
जी नमस्कार जी. मार्केट सर मेरे दो सवाल है. एक तो पहले जो आज इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, चप्पलों की महंगाई इधर कम हुई, कपड़ों की महंगाई इधर कम हुई,
लेकिन सर एक खाद्य महंगाई दर 28.30% के काफी दिनों से जमी हुई है सर, इसमें क्यों नहीं कमी आ रही जबकि ये सबसे ज्यादा कम करने की जरूरत है? अपनी घर चलाए तो कैसे चलाए, ये थोड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है, कल मैंने सीएनबीसी 18 पे मैंने सुना कि एफआई वालों ने 2,75,000 करोड़ का माल सेल किया है। अगर इतनी बड़ी सेल हुई है तो मार्केट में करेक्शन तो जबरदस्त आनी चाहिए, करेक्शन का नाम ही नहीं है सर।
And before you know Siddharth answers this question, Siddharth, since our caller is asking us about inflation, let me read out the story for the benefit of the listeners. India's headline retail inflation stayed largely unchanged at 4.83% in April, according to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. A marginal fall in the headline retail inflation rate was limited by prices of food and beverages that remained elevated at 7.87%, edging higher than 7.68%. A month ago. Food inflation rose marginally with the index coming in at 8.7% in April as compared to 8.52% in previous month. And let me also tell the listeners that for their benefit that CPI inflation was 4.85% in March, whereas it's now 8.3% in April.
गोपाल जी, जो आपका सवाल था इन्फ्लेशन पे, और खासकर देखिए, एक तो इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री बहुत साफ तौर पे दिख रही है। आरबीआई ने जो भी अभी तक अनुमान लगाए थे, जो एस्टिमेट्स दिए थे, उन्हीं के अनुरूप जो है इन्फ्लेशन अब तकरीबन 5% के नीचे है, और ऐसा अनुमान है कि इसके नीचे ही रहेगा। जहां तक आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी काफी भारी मात्रा में कमी हुई है। और जहां तक सरकार द्वारा, इसीलिए सरकार जो है, आप देखेंगे चाहे दाल हो चाहे चावल हो, उसको एक सस्ते दर पे वीट हो, और फ्री फूड ग्रेन्स हैं जो मुफ्त में, जो 5 किलो राशन हर परिवार के हर सदस्य को दिया जाता है हर महीने, तो सरकार इसी वजह से इस तरह की स्कीम्स भी लगातार जारी रखे हुए है। और फूड इन्फ्लेशन या खाद्य का जो महंगाई दर है वो बढ़े ना, और महंगाई बढ़े ना उसमें, उसके लिए हमने शुगर के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा रखा है, राइस के एक्सपोर्ट, चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है। और तो ये कई तरह के इस तरह के स्टेप्स लिए, बड़े लार्ज क्वांटिटी में हम दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं और उनपे सब्सिडी भी दे रहे हैं। आपको चने की दाल सरकार बहुत सस्ते दामों पे बेच रही है, मूंग की दाल, तो ऐसे कई जो है कदम सरकार ने उठाए हैं जिससे कि आम आदमी पर इसका, इस महंगाई का बोझ ना पड़े। हाँ, ये आपकी बात सही है, और कुछ कई बार इसमें सीजनल फैक्टर्स होते हैं और डिमांड ड्रिवन भी, बहुत कुछ चीजें सप्लाई और डिमांड की वजह से भी ये प्रेशर्स बने हुए हैं, लेकिन कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें और कमी आएगी।
इनका दूसरा सवाल एफआईआई,
हाँ, एफआईआई का सवाल अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बोला था, जब एफआईआई सेल करते हैं तो देखिए वो टाइम चला गया। अब जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बड़े तरीके से जो है इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के माध्यम से लोग आ रहे हैं बड़े लेवल पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, म्यूचुअल फंड हैं लोग, प्लस देर आर लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो मुझे नहीं लगता अब वो दौर है जब एफआईआई बेचते हैं। ठीक है, एक मार्केट जिटर होता है, मार्केट गिरती है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को लोग यूज करते हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी यूज कर रहे हैं, और इसीलिए आपको इतनी गिरावट नहीं दिखती है।
जी, अगले अपने, लेट्स गो ओवर टू आवर नेक्स्ट कॉलर हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम भिलाई, दैट्स रवि नारायण। रवि, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स। एक्चुअली इट्स फॉर द फ्लैट इज देयर, तो उसमें जो उसके जो गाइडलाइंस हैं कैपिटल गेन्स निकालने के लिए, वो फ्लैट के सिस्टम, फ्लैट में कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे निकलता है, उसका भी वहीं से गाइडलाइंस आते हैं कि उसको अलग से कैलकुलेशन होता है, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा, आज की डेट में एवेन्यूज कौन कौन से अच्छे हैं, जहां पे अच्छे हैं तो खैर वो तो रिटर्न तो उतना ही मिलना है, बट सेफ कौन से होंगे, एक दो नाम ले लें तो मेहरबानी
जी।
कैपिटल गेन फ्लैट बेच के अगर इनका क्या होता है?
रवि नारायण जी, अगर आपने जो आपने पूछा फ्लैट, अगर आप फ्लैट बेचते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कैपिटल गेन्स की स्कीम है, आप फ्लैट दोबारा खरीद सकते हैं उससे, अगर उस पर आप जो है टैक्स नहीं देना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको कुछ अवधि के लिए उसको आप बैंक में जमा कर दें, कैपिटल गेन्स अकाउंट खुलता है। लेकिन अगर आपने फ्लैट बेचा है तो आप फ्लैट, उसको फ्लैट के ही अगेंस्ट स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट आप जमीन ले लें, मकान बनाने लगे। आप जमीन बेचेंगे, मकान बेचेंगे, अगर मकान बेचते हैं तो आप उसके अगेंस्ट जमीन, लेकिन मकान, तो ये हमेशा ध्यान रखें, फ्लैट को फ्लैट से और जमीन पर बने हुए मकान को उसी से स्क्वायर ऑफ करेंगे, या फिर आप कैपिटल गेन्स अकाउंट में पैसे को रख दें और कुछ अवधि के लिए उस पर सरकार द्वारा निर्धारित अवधि है, अलग अलग वो भी जो जिस तरह अगर फ्लैट के लिए अलग है, मकानों के लिए अलग है, कुछ कुछ उस तरह का अलग डिमार्केशन है, तो उसके उससे भी आप टैक्स बचा सकते हैं।
अनिल, इंदौर के पास जाने से पहले हम ये बता दें कि केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज ईरान के लिए रवाना हुए। उनकी यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ओमान की खाड़ी के पास ईरानी तट स्थित चाबहार बंदरगाह के लंबे समय तक उपयोग की अनुमति मिलेगी। इससे ईरान होते हुए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच व्यापार का नया रास्ता भी खुलेगा तथा व्यापारियों को संवेदनशील और व्यस्त फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जल डबरू मध्य से वैकल्पिक पारगमन मार्ग तलाशने के अवसर मिलेंगे।
अनिल, अपना सवाल पूछे और थोड़ा संक्षेप में पूछिएगा। हेलो अनिल, इंदौर जी, अपना सवाल पूछे।
सवाल कि जैसे चुनाव हो रहे हैं या कभी कभी चुनाव है, तो शेयर बाजार नीचे।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अनिल, आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही है कि हम आपका सवाल जो है वो ठीक से सुन नहीं पाए। आप दोबारा फोन कट करके किसी ऐसी जगह जाकर फोन करें जहां से आपको सिग्नल्स बेहतर मिल पाए।
सिद्धार्थ, यू नो टॉकिंग अबाउट दिस चाबहार पोर्ट पैक्ट दैट ईरान हैव साइन टुडे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट पैक्ट बिकॉज इट्स बीन इन द वर्क्स फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ।
I think if I correctly remember, I must have been hearing this about this for at least last 10-15 years. So I think finally, and at a very critical juncture, I think India has taken a bold step, and I think China has also probably gone ahead and finally acceded to our this request or demand or what or negotiations, I would say. So I think, and it gives us a direct reach to Central Asia. We can now avoid Pakistan. Plus, it also kind of balances the Belt and route which was being done by China. And so I think, and it also, the most important thing is it cements the India-Iran relations, which were there were some issues, I think, in last one or two years, because Iran continues to be one of our very close partners, whether it is if concerning crude oil supplies or any other issues when it comes in the United Nations.
And let's quickly go over to our next caller who's calling us from Faridabad. Prem, Prem, please ask your question and keep it short because we're running out of time.
Hi, namaskar sir.
Namaste, apna sawal puche.
Sir, June ke mahine hamari FD shuru ho jayegi aur main ye chahta hu ki kya main apne jo 10 15 20 lakh ki jo FD hai kya sabka sab mein gold khareed ke dal dun metal ke taur pe ye best rahega ki main FD ko fir aur automatic mein chalu rakhu isme thoda right hai aap.
प्रेम जी, आपकी क्या जरूरत है, आपकी अभी आप किस अपने उम्र के किस पड़ाव पे हैं, जब तक हमें ये ना पता हो तो इस तरह की किसी भी सलाह को देना बहुत आसान नहीं होगा। और कभी भी सारा पैसा एक जगह एक तरह के निवेश में लगाना ये किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। तो मुझे लगता है आपकी क्या जरूरत है आने वाले सालों में, आप तो उसको ध्यान में रख के आप अपने निवेश को जो है उस पर फैसला करें।
And let's go over to the next story, which is about the commodities. Oil prices were little changed today after losing about $1 a barrel in the previous session on signs that U.S. policymakers are likely to keep interest rates higher for longer. The Brent crude oil futures was up by 0.46% to trade at $83.17, and West Texas Intermediate was higher by 0.55% at $78.69 when reports last came in.
और फ्यूचर्स मार्केट में आज भी सोने की कीमतों में गिरावट रही। जून अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में 757 रुपए की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 71,970 रुपए में रहा। चांदी 225 रुपए की गिरावट के साथ प्रति किलो 84,685 रुपए पर रही। आज के लिए बस इतना ही, वक्त खत्म हो रहा है। हमारे तमाम श्रोता जिन्होंने हमें फोन किया और जिन्होंने हमें सुना, उनका धन्यवाद। और साथ ही सिद्धार्थ सिंह, आपका भी स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices end in green today. Sensex gains 111 points. Nifty closes above 22,100. India and Iran ties hit new milestone, signed 10-year contract on operating Chabahar port. And India's retail inflation eases to 4.83% in April versus 4.85% in March. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.